इशिका के सामने तरुण का पर्दापाश के बाद युविका अपने काम से बाहर चली गई थी। हालांकि युविका यही चाहती थी कि इशिका उसी के घर जाए, लेकिन कपड़े और बाकी सामान लेने के लिए इशिका इस वक्त माया के घर जा रही थी। इशिका रोड पर खड़ी होकर टैक्सी का इंतजार कर रही थी कि तभी एक काली गाड़ी अचानक आई और उसमें बैठे शख्स ने उसे दाढ़ी के अंदर खींच लिया। इशिका कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके मुंह पर टेप लगा दिया गया था और हाथों को भी टेप से बांध दिया गया था। इशिका घूरकर अपने पास वाली सीट पर बैठे अभिमन्यु को देख रही थी। गाड़ी के बीच पार्टीशन लगा होने की वजह से ड्राइवर और पृथ्वी उन्हें नहीं देख सकते थे, ना ही उनकी बात सुन सकते थे। अभिमन्यु ने कंधे उचकाए और कहा, क्या मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? तुमसे बात करने के लिए, मिलने के लिए मुझे ये उल्टी सीधी हरकतें करनी पड़ रही हैं। किसी को पता चला तो लोग क्या सोचेंगे कि अभिमन्यु राजवंश, दी अभिमन्यु राजवंश, अपनी ही वाइफ से बात करने के लिए उसे दूसरी बार किडनैप कर रहा है। इशिका ने अभिमन्यु को एंग्री लुक दिया और फिर सीट पर लीन हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिमन्यु की बात का जवाब ही ना देना चाहती हो। शुरुआत में जो अभिमन्यु राजवंश उसको इग्नोर कर रहा था, उससे बात ना करने के लिए अपनी सिक्योरिटी टाइट करवाना, यहाँ तक कि शेड्यूल तक बदल दिया था, किसने सोचा होगा कि वो आज इशिका से बात करने के लिए इस हद तक चला जाएगा कि उसे किडनैप तक कर देगा। इशिका को शांत और चुप देखकर अभिमन्यु को चिढ़ हो रही थी। उसने धीरे से उसके चेहरे से टेप हटाया और बोला, अब इस तरह चुप तो मत रहो। इशिका के चेहरे से टेप हटते ही उसने राहत की सांस ली। फिर उसने अभिमन्यु की तरफ घूमते हुए देखकर कहा, बोलेगी तो तब ना जब तुम मेरे मुंह से ही टेप हटाओगे। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से क्या हो सकता है? मैं कुछ नहीं जानता। मुझे पता है तो सिर्फ इस बात का कि मुझे अपनी वाइफ से बात करनी है और वो मुझे नहीं करने दे रही है। यू कांट इग्नोर मी लाइक दिस। तुमने प्रॉमिस किया था कि हम टच में रहेंगे। ये होता है टच में रहना, अभिमन्यु ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा। वो बच्चों की तरह मुंह फुलाकर दूसरी तरफ बैठ गया था। इशिका ने गहरी सांस ली। उसने अभिमन्यु को मनाने के बजाय पार्टीशन के दरवाजे को खोला। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ के साथ ही अभिमन्यु फिर से नॉर्मल तरीके से बिल्कुल सख्त अंदाज में बैठ गया था, जैसा वो लोगों के सामने रहता था। इशिका ने ड्राइवर से तेज़ आवाज़ में कहा, तुम अभी मुझे उस जगह ड्रॉप करोगे जहाँ से तुमने मुझे उठाया था। कुछ भी करने से पहले ड्राइवर ने पृथ्वी की तरफ देखा, तो पृथ्वी ने अभिमन्यु की तरफ। अभिमन्यु ने जवाब में कहा, जब तक मेरी बात नहीं हो जाती तब तक तुम कहीं नहीं जा सकती हो। पृथ्वी, गाड़ी हमारे डेस्टिनेशन पर जाकर ही रखेगा। तुम जानते हो ना मुझे मिस सिंघानिया से क्या बात करनी है। इशिका हैरानी से अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। आज से पहले अभिमन्यु ने उसकी कोई बात नहीं डाली थी। इशिका ड्राइवर या पृथ्वी को कुछ बोल पाती उससे पहले अभिमन्यु ने फिर से पार्टीशन लगा दिया था और इस बार उसने उसे लॉक कर दिया था। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ सख्त निगाहों से देखा और कहा, देखो जिद मत करो, तुम्हें जो बात करनी है वो हम बाद में कर लेंगे। फिलहाल मेरा तरुण के घर पहुंचना बहुत जरूरी है। मुझे ऐसा करने के लिए तुम ही मजबूर कर रही हो, अब चुपचाप बैठी रहो, अभिमन्यु ने सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु का लहजा देखकर साफ था कि वो अभिषिका की नहीं सुनने वाला है। इशिका को गुस्सा भी आ रहा था। उसने तीन चार बार गहरी सांसें ली और फिर अपने गुस्से को काबू करके कहा, ठीक है, तुम्हें मुझसे जो भी कहना है यहाँ पर कह सकते हो, मैं सुन रही हूँ। नहीं, गाड़ी में तुमसे बात करूंगा, इतने बुरे दिन नहीं आए हैं मेरे। मिसेज राजवंश, बात तो मेरी डिसाइड की हुई डेस्टिनेशन पर जाकर ही होगी, अभिमन्यु जिद पर अड़ते हुए बोला। इशिका ने गुस्से में अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया था। अभिमन्यु के इस तरह जिद करने पर अचानक ही इशिका के दिमाग में उस लड़की की यादें ताज़ा हो गईं जिसे वो बचपन में जिद्दी बंदर कहकर बुलाया करती थी। वो भी इतना ही जिद्दी था। इशिका को आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब वो लड़का भूख से तड़प रहा था। तब सबके कहने के बाद भी वो खाना नहीं खा रहा था। आधी रात के वक्त इशिका अपना खाना लेकर उसके पास पहुंची। तब बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर उसने इशिका का खाना खाया था। एक बार तो उसने खाना खा लिया था, लेकिन अगले दिन इशिका फिर से उसके लिए खाना लेकर पहुंची तो वो अपने सर को घुटनों के बीच में देकर बैठा हुआ था। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं खाना है, और मैं क्यों तुम्हारे हिस्से का खाना खाऊंगा? अगर तुमने नहीं खाया तो तुम भी बीमार पड़ जाओगी। ले जाओ अपना खाना यहाँ से, मुझे भूख नहीं है, उसे लड़के ने इशिका को काफ़ी बेरुखी से कहा और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। इशिका खाने की प्लेट के साथ दूसरी तरफ आकर बैठ गई और उस लड़के के चेहरे की तरफ देखने लगी। उसने अपने नन्हे कोमल हाथों से एक छोटा सा बाइट बनाया और उस लड़के के मुँह की तरफ ले जाते हुए कहा, उफो तुम बहुत ज़िद्दी हो, बोल रही हूँ मुझे भूख नहीं है तो तुम मेरी बात मान के नहीं लेते। अभी थोड़ी देर पहले उन अच्छे अंकल ने मुझे चॉकलेट दी थी। पक्का तुम्हें भूख नहीं है? उसने कंफर्म करने के लिए एक बार फिर से पूछा, तो इशिका ने जबरदस्ती उसके मुंह में खाने का टुकड़ा डाल दिया था। जितने दिनों के लिए इशिका वहां पर थी, जब भी वो उसके लिए खाना लेकर जाती तो वो घंटों इसी तरह जिद करता और बहुत मिन्नत करने के बाद इशिका के हाथों से ही खाना खाता था। बदले में रात को जब इशिका को नींद नहीं आती थी तो वो उसका सिर अपनी गोद में रखकर सहलाता तो जल्द ही वो नींद के आगोश में चली जाती थी। कुछ दिनों में उन दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बन गया था। उस लड़के के बारे में सोचते हुए इशिका के मुंह से अचानक निकला, जिद्दी बंदर। हालांकि ईशिका ने ज्यादा तेज नहीं बोला था, फिर भी अभिमन्यु को सुनाई दे गया था। उसके चेहरे पर वही ना दिखने वाली स्माइल थी। उसने ईशिका को परेशान करने के अंदाज में कहा, आपने मुझे कुछ कहा मिसेज राजवंश? ईशिका ने उसे देखकर मुंह बनाया और फिर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर दिया था। अभिमन्यु उसे जहां भी लेकर जा रहा था वो जगह काफी दूर थी। बैठे बैठे ईशिका को इरिटेट होने लगा तो वो अभिमन्यु की तरफ मुड़ते हुए चिढ़कर बोली, देखो बहुत हो गया, या तो तुम इस गाड़ी को रुकवा दो या फिर मैं दरवाजा खोलकर बाहर कूद जाऊंगी। ट्राई करके देख लो, अभिमन्यु ने चैलेंजिंग वॉइस में कहा। ईशिका दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही अपना हाथ बढ़ाने लगी, अभिमन्यु ने उसे पकड़ा और अपने करीब खींच लिया था। ईशिका उसे दूर होने के लिए हाथ पैर मार रही थी। ऐसा नहीं था कि ईशिका फिजिकली फिट नहीं थी, पर अभिमन्यु के आगे उसकी एक नहीं चल रही थी। ईशिका अभिमन्यु से अलग होने की जद्दोजहद कर रही थी, तभी अभिमन्यु भी फिर से उसके हाथ बांध दिए थे। शांत होकर बैठी रहोगी, उसी में तुम्हारा फायदा है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मुझे कोई और ही तकनीक अपनानी पड़े, अभिमन्यु ने ईशिका को छोड़ते हुए कहा। लगभग 2.5 घंटे का लंबा सफर तय करने के बाद अभिमन्यु ईशिका को दिल्ली से आगे ले आया था। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचते ही अभिमन्यु गाड़ी से बाहर निकला और ईशिका को अपनी बाहों में उठा लिया था। वो ईशिका को सामने मौजूद एक फार्म हाउस पर लेकर जा रहा था। ईशिका ने अब अभिमन्यु से खुद को छुड़ाने की कोशिश बंद कर दी थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसा क्या था कि अभिमन्यु उसे इतनी दूर बात करने के लिए लेकर आया था। वो एक खूबसूरत सा फार्म हाउस बना हुआ था। अभिमन्यु ईशिका को सीधे ऊपर के कमरे में लेकर गया।
रूम में आते ही अभिमन्यु ने ईशिका को नीचे उतारकर उसके हाथ खोल दिए थे। फिर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और ईशिका की तरफ पलटते हुए कहा, आखिर किस बात की नाराजगी है तुम्हें मुझसे, जो तुम मुझसे बेगाने की तरह बिहेव कर रही हो? तुम्हारी बात मान रहा हूँ, तुमसे दूर रह रहा हूँ, और क्या चाहिए तुम्हें ईशिका? बोलते हुए अभिमन्यु की आवाज़ भारी हो रही थी। ईशिका ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे कोई बहस नहीं करनी है अभिमन्यु, और ना ही तुम्हें कोई झूठा दिलासा देना है। सब कुछ ठीक हो जाने के बाद हम सबसे पहले तलाक लेने वाले हैं, और करण वही है। तुम प्रणाली के एहसानों को भूलकर कभी उसे छोड़ नहीं सकते हो, ना ही मैं तुम्हें ऐसा करने को कहूंगी। पर मैं एक ऐसी इंसान नहीं हूं जो अपने पति को किसी के साथ बांटना चाहे। ईशिका ने सख्ती से अपनी बात अभिमन्यु के सामने रखी और वहां से जाने लगी। तभी अभिमन्यु ने उसे पकड़कर दीवार से लगा दिया था। अभिमन्यु के दोनों हाथ ईशिका के इर्द गिर्द दीवार पर थे। और ये बात तुम मुझे क्लियरली नहीं कह सकती थी? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, मेरा प्रणाली से कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मुझे उससे कोई रिश्ता रखना है, अभिमन्यु ने ईशिका की आंखों में देखते हुए कहा। अगर तुम्हारा उससे कोई रिश्ता नहीं है तो वो तुम्हें क्यों कॉल कर रही है? ईशिका ने सिर हिलाकर कहा। तकलीफ में वो भी थी, उसकी आंखें भी नम हो रही थीं, पर उसे खुद को सख्त दिखाना था। अभिमन्यु से अलग होने का फैसला ईशिका के लिए भी आसान नहीं था। अभिमन्यु कुछ पल के लिए शांत हो गया, तभी ईशिका को मौका देखकर उसके हाथों की कैद से आज़ाद हो गई। उसने दरवाज़ा खोला और बिना अभिमन्यु की तरफ देखे सख्त आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी तड़प को समझ सकती हूँ। इस तरह दो नावों पर सवार होकर चलना भी बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें प्रणाली को छोड़ने के लिए नहीं कहूँगी। अपने बचपन के वादे को निभाओ अभिमन्यु, उससे शादी नहीं कर सकते तो उसका साथ तो दो, उसके साथ रहो, शी नीड्स यू। इतना कहकर ईशिका वहां से जाने को हुई, तभी उसके कानों में अभिमन्यु की आवाज़ पड़ी। यस शी नीड्स मी, अभिमन्यु ने कहा। उसकी बात सुनकर ईशिका के कदम वहीं पर रुक गए थे। उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ गए थे। ईशिका को मन ही मन लगा अभिमन्यु उसे मनाएगा, पर यहां तो अभिमन्यु फिर उससे पहले प्रणाली के बारे में सोच रहा था। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और आगे कहा, बचपन में साथ देने का वादा किया था, वही निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस प्रॉब्लम यह है कि सही इंसान को समझने में थोड़ी देर कर दी। 11 आई एम रियली सॉरी कि मैं वादा करके भी तुम्हें लेने नहीं आ सका, अभिमन्यु ने पीछे से इमोशनल टोन में कहा। अभिमन्यु के मुंह से 11 शब्द सुनकर ईशिका को धक्का सा लगा। इस नाम के बारे में सिर्फ एक इंसान जानता था, और वो था वो लड़का जो उसके साथ उस जगह पर कैद था। अचानक ही ईशिका को सब समझ आया और वो अभिमन्यु की तरफ पलटी। चलो जी, ये सस्पेंस भी खुल गया कि अभिमन्यु ही वो लड़का था जो बचपन में ईशिका के साथ उस जगह पर कैद था। अब कम से कम दोनों अलग तो नहीं होंगे। देखते हैं इनका रिश्ता आगे क्या रंग लाता है। पढ़कर कमेंट कर दीजिएगा। अगले पार्ट पर मिलते हैं।